एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास किताब शेरिल स्ट्रेट की वाइल्ड, इस पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों पर असर डाला है।
हाँ बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है वो जाहिर है खुद ये किताब है, शेरिल स्ट्रेट के बारे में तथ्य हैं और इस पर जो चर्चा हुई है वो सब है।
तो हमारा इरादा है इस कहानी को और इसके पीछे जो गहरे मानवीय सबक छिपे हैं उनको समझना। ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, है ना?
नहीं बिल्कुल नहीं, वाइल्ड जैसा आपने कहा ये शेरिल स्ट्रेट की अपनी जिंदगी की कहानी है। वो एक जानी मानी अमेरिकी लेखिका है और वो मतलब दुख, मुश्किलों से उभरने की ताकत और खुद को बदलने जैसे बहुत ही मुश्किल निजी विषयों पर लिखती हैं।
और बहुत ईमानदारी से लिखती हैं ऐसा मैंने सुना है।
हाँ बहुत ईमानदारी से। वाइल्ड से पहले भी उनके काम है, जैसे उनका उपन्यास टॉर्च या उनका एक बहुत मशहूर सलाह कॉलम था डियर शुगर, उसमें भी उनकी वो गहरी हमदर्दी और जिंदगी के जो कड़वे अनुभव होते हैं उनसे मिली समझ साफ झलकती है।
और वाइल्ड की कहानी तो असाधारण है। सोचिए, सिर्फ 26 साल की उम्र में उनकी माँ की अचानक मौत हो जाती है, फिर शादी टूट जाती है, नशे की तरफ झुकाव, मतलब जिंदगी एकदम बिखरी हुई। और तब वो एक फैसला करती हैं अकेले ही 1100 मील लंबे पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल पर चलने का।
हाँ PCT पर। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना कि जब सब कुछ बिखर जाए, जब लगे कि कुछ बचा ही नहीं, तो इंसान आगे कैसे बढ़े।
सही बात है। और क्या इतनी बड़ी शारीरिक चुनौती झेलना, क्या वो हमें अंदर के गहरे जख्मों से उबार सकता है?
यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है और यही सवाल इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है। ये उन सबके लिए है जिन्होंने कभी ना कभी खुद को खोया हुआ, टूटा हुआ महसूस किया है। ये सिर्फ पहाड़ों पर चलने की कहानी नहीं है, ये उस दुख के, उस अंदरूनी जंगल से गुजरने की कहानी है जिसमें खोकर शायद खुद को फिर से पाया जा सकता है।
तो चलिए सफर को थोड़ा शुरू से देखते हैं। शेरिल का बचपन कैसा था? आपने कहा माँ का जिक्र बहुत अहम है।
हाँ बिल्कुल, उनका बचपन आसान नहीं था, मतलब गरीबी थी, लेकिन उनकी माँ बॉबी वो कमाल की थी, बहुत आशावादी, बहुत मजबूत इरादों वाली।
अच्छा।
बॉबी ने अपने पति के बुरे बर्ताव को सहा नहीं, वो अलग हो गईं और अकेले ही बच्चों को पाला। इसका शेरिल के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही खास, बहुत मजबूत था।
लेकिन फिर वो ट्रेजेडी हुई।
हाँ, जब शेरिल सिर्फ 22 साल की थी उनकी माँ को अचानक कैंसर का पता चला और बहुत तेजी से सिर्फ 45 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ये घटना शेरिल की जिंदगी का मतलब एक केंद्रीय बिंदु बन गई। इसने उनके परिवार को, उनकी अपनी पहचान को, सब कुछ झकझोर कर रख दिया।
समझ सकता हूँ। माँ की मौत के बाद फिर क्या हुआ? उनकी जिंदगी पटरी से उतर गई जैसा आपने बताया।
हाँ बिल्कुल, वो गहरे सदमे और दुख में डूब गईं। उनके पति थे पॉल, जिनसे वो प्यार भी करती थी, लेकिन उनसे रिश्ता बिगड़ गया, शादी टूट गई, उन्होंने बेवफाई की।
ओह।
और कुछ वक्त के लिए वो हेरोइन जैसे नशे के चक्कर में भी पड़ गईं। वो पूरी तरह से खोया हुआ, भटका हुआ महसूस कर रही थीं।
और इसी हालत में उन्होंने वो PCT वाली गाइडबुक देखी।
हाँ, इसी टूटन और बिखराव के बीच एक दिन दुकान में उनकी नज़र उस गाइडबुक पर पड़ी और शायद उस पल उन्हें लगा कि अब खोने को कुछ है ही नहीं। तो एकदम अचानक, बिना किसी खास तैयारी के, बिना किसी अनुभव के, उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस लंबी खतरनाक पदयात्रा पर अकेले जाएंगी।
ये तो बहुत बड़ा रिस्क था बिना तैयारी के।
हाँ, ये एक तरह का डेस्परेशन भी था शायद, आखिरी तिनके का सहारा जैसा। तैयारी की कमी तो आप पूछिए मत, बिना ठीक से जाने समझे सामान खरीदा, एक इतना भारी बैकपैक तैयार किया।
हाँ, वो मॉन्स्टर वाला किस्सा।
हाँ, उन्होंने खुद उसे मॉन्स्टर यानी राक्षस नाम दिया। वो इतना भारी था कि उसे उठाना तक मुश्किल था। और ये मॉन्स्टर सिर्फ सामान का बोझ नहीं था, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद उनके अंदर के दुख, अपराध बोध, खोएपन, उन सब का बोझ था जिसे वो अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़ी थी।
एकदम, ये सिर्फ शारीरिक बोझ नहीं था, ये उनके भावनात्मक बोझ का प्रतीक बन गया था। और यात्रा शुरू होती ही पता चल गया कि कितना मुश्किल होने वाला है। शुरुआती दिन मुजावे रेगिस्तान में थे, भयानक गर्मी, पानी की कमी,
पैरों में छाले पड़ गए होंगे बुरी तरह।
हाँ भयानक छाले, वो भारी मॉन्स्टर का वजन और मीलों तक फैला अकेलापन, ये सब दिखाता है कि वो कितनी कच्ची थीं, कितनी अनुभवहीन। प्रकृति ने आते ही उन्हें अपनी कठोर सच्चाई दिखा दी।
लेकिन शायद यही जरूरत थी उस वक्त, वो शारीरिक तकलीफ, वो संघर्ष। क्या उसने उन्हें उनके अंदरूनी दुख से बाहर निकाला?
हाँ, ये एक बहुत अहम बात है। वो जो बाहरी चुनौती थी वो इतनी बड़ी थी कि अंदर का दर्द शायद कुछ पल के लिए पीछे हट गया। उन्हें सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना था, जिंदा रहना, आगे बढ़ते रहना। और यहीं से उनका असली बदलाव शुरू हुआ।
तो उनकी मुख्य उपलब्धि क्या मानी जाएगी, ये कि उन्होंने सफर पूरा किया?
हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बिना किसी ट्रेनिंग के अकेले 1100 मील की पदयात्रा, 94 दिन लगे उन्हें। मोजावे के रेगिस्तान से शुरू करके सियरा नेवादा के बर्फीले पहाड़ों तक और फिर ओरेगन के घने जंगलों से गुजरते हुए।
रास्ता तो बहुत मुश्किल रहा होगा, बर्फीले तूफान, रास्ता भटकना।
हाँ, बहुत मुश्किलें थीं। खतरनाक बर्फीले तूफान झेले, कई बार रास्ता भटकी, जंगली जानवरों का डर तो हमेशा ही था, और लगातार शारीरिक पीड़ा। उनके तो जूते तक खो गए थे एक बार। भूख, थकान, दर्द, ये सब रोज की बात थी।
लेकिन वो टिकी रहीं।
हाँ, और इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें धीरे धीरे बदला। वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होती गईं। वो अनुभवहीन लड़की अब एक काबिल यात्री बन रही थी। उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे अपने मॉन्स्टर बैकपैक का बोझ कम किया जाए।
अच्छा, मतलब गैर जरूरी चीजें हटाएं।
हाँ, गैर जरूरी चीजों को हटाया। ये सिर्फ वजन कम करना नहीं था, ये शायद इस बात का भी प्रतीक था कि वो अपने भावनात्मक बोझ को भी समझना सीख रही थीं, कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है।
और इस सफर में वो पूरी तरह अकेली भी नहीं थी ना, कुछ लोग मिले उन्हें रास्ते में।
हाँ, ये भी जरूरी बात है। उन्हें दूसरे यात्री मिले, और खास तौर पर ट्रेल एंजल्स मिले। ये वो अजनबी लोग होते हैं जो रास्ते में यात्रियों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। खाना दे दिया, पानी दे दिया, कहीं झुकने की जगह दे दी।
वाह,
इन छोटी छोटी मुलाकातों ने, इस इंसानी जुड़ाव और दयालुता ने उन्हें बहुत हिम्मत दी, खास तौर पे तब जब वो खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थीं।
और वो लोमड़ी वाली घटना, वो क्या थी?
हाँ, एक खास पल था जब उन्हें एक काली लोमड़ी दिखाई दी। शेरिल को ऐसा लगा जैसे वो उनकी माँ की आत्मा का कोई संकेत है। ये दिखाता है कि ये यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी था उनके लिए। उनका प्रकृति से रिश्ता गहरा हो रहा था।
और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंचीं, कोलंबिया नदी पर बना ब्रिज ऑफ द गॉड्स। वहां पहुंचकर कैसा महसूस हुआ उन्हें? क्या जीत की खुशी थी?
नहीं, वो वैसी खुशी नहीं थी, मतलब जीत के शोरगुल वाली नहीं। वो एक गहरी खामोश शांति थी, ऐसी शांति जो बहुत कुछ झेलने और सहने के बाद मिलती है। उन्हें ये एहसास हुआ कि दुख कहीं गया नहीं है, वो शायद कभी जाएगा भी नहीं। लेकिन अब उन्होंने उसे स्वीकार करना सीख लिया है, उसके साथ जीना सीख लिया है। वो उस बोझ को उठाना सीख गई हैं बिना उसके नीचे दबे।
और इसी अनुभव ने फिर वाइल्ड किताब को जन्म दिया।
बिल्कुल, और इस किताब ने उन्हें दुख और मुश्किलों से लड़कर खड़े होने की जो ताकत होती है, उस विषय पर एक बहुत अहम आवाज बना दिया। उनकी कहानी ये दिखाती है कि टूटने के बाद भी फिर से जुड़ना, नया जीवन बनाना मुमकिन है। बाद में उन्होंने दोबारा शादी की, उनके बच्चे हुए।
तो ये जो पूरी यात्रा है और ये किताब, इसके पीछे कुछ गहरे विचार, कुछ मूल्य हैं। आपने एक कहा था, दुख एक जंगल की तरह है, ये थोड़ा और समझाएंगी?
हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। मतलब ये कि गहरा दुख, जैसे किसी अपने को खोने का दर्द, वो एक अनियंत्रित जंगली इलाके जैसा है। आप उसे किसी नक्शे से या तर्क से पूरी तरह समझ नहीं सकते। आपको उसमें उतरना पड़ता है, उसे अनुभव करना पड़ता है। उसके अपने नियम होते हैं, अपनी चुनौतियां होती हैं।
और शेरिल के लिए वो बाहर का जंगल PCT उनके अंदर के जंगल का आईना बन गया।
एकदम, बाहर के जंगल की चुनौतियों से जूझते हुए वो अनजाने में अपने अंदर के दुख और उथल पुथल के जंगल में भी रास्ता बनाना सीख रही थी। बाहरी सफर अंदरूनी सफर का जरिया बन गया।
और दूसरा विचार कि मुश्किलों से इलाज हो सकता है। जानबूझकर इतनी कठिन शारीरिक चुनौती लेना, क्या ये वाकई भावनात्मक रूप से ठीक होने में मदद करता है?
शेरिल की कहानी तो यही इशारा करती है। देखिए, जब मन गहरे दुख या सदमे में एकदम सुन पड़ जाता है, कुछ महसूस नहीं कर पाता, तब शरीर एक जरिया बन सकता है। वो जो भीषण शारीरिक पीड़ा थी, छाले, भूख, थकान, दर्द, उसने शरीर को हर पल, हर सांस पर वर्तमान में जीने को मजबूर किया।
वो अपने अंदर के दर्द से बाहर नहीं सकती थी।
बिल्कुल, शरीर चीख रहा था और उसे सुनना ही था। उनका शरीर, उनका दर्द, ये सब उनके भावनात्मक उपचार का एक अप्रत्याशित जरिया बन गया। ये दिखाता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा शारीरिक मशक्कत हमें उस भावनात्मक जड़ता से बाहर निकाल सकती है जिसमें हम फंस जाते हैं।
इसमें प्रकृति की भूमिका भी बहुत बड़ी लगती है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो सख्त भी थी।
हाँ, प्रकृति बहुत सख्त टीचर है। वो आपको आपकी असलियत दिखा देती है, आपका अहंकार तोड़ देती है। जब आप एक विशाल पहाड़ के सामने खड़े होते हैं या बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं, तो आपकी अपनी परेशानियां, आपका मैं, वो सब बहुत छोटे लगने लगते हैं।
सही बात है।
प्रकृति की ये विशालता और उसकी उदासीनता, मतलब उसे आपकी परवाह नहीं है, ये आपके निजी दुख को एक नया नजरिया देती है। और हाँ, उसकी सुंदरता भी है। एक जंगली फूल का खिलना या सूर्यास्त, ये मुश्किल वक्त में सुकून और उम्मीद भी देती है।
और अकेले होने की वजह से सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, कोई और मदद करने वाला नहीं था।
ये कट्टर आत्मनिर्भरता, रेडिकल सेल्फ रिलायंस और जिम्मेदारी का सबक बहुत अहम है। रास्ते में हर छोटा बड़ा फैसला शेरिल का अपना था। कितना पानी पीना है, कहाँ रुकना है, कौन सा रास्ता लेना है, और हर फैसले का नतीजा भी उन्हें ही भुगतना था, अच्छा या बुरा।
इससे लाचारी की भावना कम होती होगी, है ना?
हाँ बिल्कुल, लाचारी खत्म होती है और अंदर से एक ताकत महसूस होती है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। ये एहसास कि आप ही खुद को बचा सकते हैं, ये उनकी यात्रा का एक बहुत बड़ा सबक था। सशक्तिकरण का भाव आता है।
शारीरिक और भावनात्मक दर्द के जुड़ाव की बात भी बार बार आती है इस कहानी में।
हाँ, जैसे उनके पैरों के वो नासूर बन चुके छाले या कंधे का दर्द, वो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं थे, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर के जख्मों का, उनके भावनात्मक दर्द का प्रतिबिंब बन गए थे। अपने शरीर की देखभाल करना, उस दर्द को सहना और फिर भी चलते रहना, ये एक तरह से अपनी आत्मा की देखभाल करने जैसा था।
मतलब शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाकर वो अनजाने में भावनात्मक सहनशक्ति भी बढ़ा रही थीं।
हाँ, ऐसा कह सकते हैं, शरीर और मन जुड़े हुए हैं। जब शरीर मुश्किल झेलना सीखता है तो शायद मन भी सीखता है।
एक और दिलचस्प बात यह है कि उपचार का मतलब यहाँ मिटाना नहीं बल्कि स्वीकार करना है। दुख को मिटाया नहीं जा सकता।
बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी बात है। शेरिल ने अपनी माँ की यादों को, अपने दुख को या अपनी पिछली गलतियों को मिटाने की कोशिश नहीं की। जैसे उन्होंने उस भारी मॉन्स्टर बैकपैक को उठाना सीखा, उसे अपना हिस्सा माना, वैसे ही उन्होंने अपने दुख और अपराध बोध को अपनी कहानी का हिस्सा मानकर उसे साथ लेकर आगे बढ़ना सीखा।
तो इलाज भूलने में नहीं है?
नहीं, इलाज भूलने में नहीं, बल्कि उन जख्मों को, उन अनुभवों को अपनी पहचान में समाहित करने में है। जैसे बैकपैक का बोझ कम किया, गैर जरूरी चीजें हटाई, लेकिन बैकपैक तो साथ रहा। वैसे ही दुख साथ रहता है, पर आप उसे ढोना सीख जाते हैं।
और अकेलापन और जुड़ाव का भी एक संतुलन दिखता है। यात्रा तो अकेली थी, पर दूसरों की दयालुता भी मिली।
की दयालुता, चाहे वो ट्रेल एंजल्स की छोटी सी मदद हो या किसी साथी यात्री से दो पल की बातचीत, वो हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले नहीं हैं, कि हम मायने रखते हैं। ये बाहरी जुड़ाव उस अंदरूनी मुश्किल यात्रा को जारी रखने की हिम्मत देता है।
और एक सीधी खरी बात जो निकल कर आती है, इंतजार मत करो। दुनिया के बदलने का या दर्द के जाने का इंतजार करना बेकार है, एक्शन लेना होगा।
हाँ, शेरिल को ये कड़वा सच समझ आया कि कायनात को आपकी परवाह नहीं है, वो तो अपना काम करती रहेगी। द यूनिवर्स वुड टेक वॉट एवर इट वॉन्टेड। अगर बदलाव लाना है तो आपको खुद ही कुछ करना होगा। आई रियली हैड टू एक्ट। उनका PCT पर जाने का फैसला ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन था। निष्क्रियता और खुद पर तरस खाने की स्थिति से बाहर निकलने का एक रेडिकल कदम।
और आखिर में अंदर की ताकत और खुद को माफ करने की जरूरत।
उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ की सिखाई बातें, उनका प्यार, वो मरने के बाद भी उनके अंदर ही मौजूद है।
आई हैड अ मदर इन मी। हमारे प्रियजन जाने के बाद भी उनकी शक्ति, उनकी यादें हमारे भीतर रहती हैं। और खुद को माफ करना, अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए, ये भी ठीक होने की प्रक्रिया का एक बेहद जरूरी और अक्सर बहुत मुश्किल हिस्सा है।
अगर हम शेरिल की जिंदगी को देखें तो तीन ऐसे खास मोड़ नजर आते हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला तो जाहिर है उनकी माँ की मौत।
हाँ, वो तो नींव हिला देने वाली घटना थी। 45 साल की माँ का अचानक चले जाना सिर्फ असहनीय दुख नहीं लाया, इसने उनकी पहचान, उनका परिवार, उनकी जिंदगी की दिशा सब कुछ बिखेर दिया। इसी ने बाद के संकटों की जमीन तैयार की। ये पहला बड़ा धक्का था।
दूसरा मोड़ था PCT पर जाने का। वो अचानक आवेग में लिया गया फैसला। उस स्टूडेंट की हालत में एक गाइडबुक देखकर इतना बड़ा, इतना मुश्किल कदम उठा लेना, ये वाकई एक क्रांतिकारी मोड़ था, है ना? ये वो पल था जब उन्होंने विनाश के रास्ते पर फिसलते जाने के बजाय एक बिल्कुल अनजाने, बेहद मुश्किल लेकिन शायद उम्मीद भरे रास्ते को चुना। बिना तैयारी, बिना अनुभव, सिर्फ एक अंदरूनी पुकार पर। ये उनकी हताशा भी दिखाता है और कहीं गहरे दबी हुई जीने की इच्छा भी। ये निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ एक जबरदस्त छलांग थी।
और तीसरा मोड़, वो मंजिल ब्रिज ऑफ द गार्ड्स पर पहुंचना।
हाँ, यात्रा का अंत। लेकिन ये सिर्फ एक जगह पहुंचना नहीं था, ये एक अंदरूनी अवस्था तक पहुंचना था। वहां उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने दुख पर जीत हासिल नहीं की है, बल्कि उसे अपने वजूद का हिस्सा मान लिया है, उसे साथ लेकर चलना सीख लिया है। ये उस शांति और ताकत का प्रतीक था जो उन्होंने उस कठिन यात्रा से खुद कमाई थी, और इसी कमाई हुई ताकत ने उन्हें भविष्य का सामना करने और उसे बनाने की नींव दी।
शेरिल की कहानी में मुझे लगता है हम सबके लिए कुछ ना कुछ है। ये दिखाती है कि कोई इंसान कैसे असहनीय दुख, खासकर किसी अपने को, माता पिता को खोने के दर्द से गुजरता है।
बिल्कुल, और ये उन पलों से जुड़ती हैं जब जिंदगी बिखरी हुई लगती है, जब हम पूरी तरह खोया हुआ और दिशाहीन महसूस करते हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं।
और ये भी दिखाती है कि दुख से निपटने के लिए लोग कैसे गलत रास्ते चुन लेते हैं। नशा, रिश्ते खराब करना, जो असल में दर्द को और बढ़ाते ही हैं।
हाँ, ये आत्मविनाशकारी पैटर्न बहुत आम है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये उम्मीद भी देती है। ये दिखाती है कि कैसे बड़ी त्रासदियों के बाद भी इंसान अपनी पहचान और जीने का मकसद फिर से ढूंढ सकता है। ये खुद को फिर से परिभाषित करने की मानवीय इच्छा की कहानी है।
और खुद को माफ करने की जरूरत पर जोर देती है। अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उनके लिए खुद को माफ करना कितना मुश्किल पर कितना जरूरी है।
हाँ, आत्मक्षमा की यात्रा बहुत कठिन होती है, और ये भी कि चुनौतियां हमें हमारी अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास कराती हैं। जैसे शिरिल को पता चला कि वो उस मॉन्स्टर बैकपैक को उठा सकती हैं, आई कुड कैरी इट, वैसे ही हम भी शायद जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बोझ उठा सकते हैं, उससे ज्यादा मजबूत होते हैं।
अकेलेपन और साथ की जरूरत का संतुलन भी एक आम इंसानी अनुभव है। हमें खुद को समझने के लिए कभी कभी अकेले वक्त बिताने की जरूरत होती है।
हाँ बिल्कुल, और कभी दूसरों के साथ की, ये याद रखने के लिए कि हम जुड़े हुए हैं, कि हम मायने रखते हैं।
और PCT पर वो कहावत चलती है, हाइक योर ओन हाइक, यानी अपनी राह खुद चलो।
हाँ, ये जिंदगी पर भी लागू होती है। हर किसी के ठीक होने का, आगे बढ़ने का रास्ता अलग होता है। दूसरों से तुलना करने का कोई मतलब नहीं। अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलना, प्रामाणिकता से जीना ज्यादा जरूरी है।
और आखिर में वो बोझ ढोने वाली बात, जैसे शेरिल ने मॉन्स्टर को ढोना सीखा। हम सबके पास अपने अपने मॉन्स्टर्स होते हैं, दुख, पछतावा, पुराने जख्म। शायद मकसद उनसे पूरी तरह छुटकारा पाना है ही नहीं।
हाँ, शायद मकसद है उन्हें ढोना सीखना, खुद को मजबूत बनाकर, जो गैर जरूरी बोझ है उसे पहचान कर हटाकर, और उस बोझ को हमें आगे बढ़ने से रोकने ना देकर। ये स्वीकार करना कि हाँ, बोझ है पर चलना तो है, उसे अपने सफर का हिस्सा बनाना है।
तो इस सारी बातचीत के बाद अगर तीन खास बातें, तीन निष्कर्ष निकालने हो इस कहानी से, तो वो क्या होंगी? पहली, कोई एक भावनात्मक सीख।
भावनात्मक सीख शायद ये है कि ठीक होने का मतलब दुख को मिटाना या उसे पूरी तरह उबर जाना नहीं है। इसका मतलब है उसे स्वीकार करना, उसे अपनी जिंदगी की कहानी का, अपनी पहचान का हिस्सा बनाना सीखना। सच्ची शांति दुख को खत्म करने से नहीं मिलती, बल्कि उसे अपनाकर उसके साथ जीना सीखने से मिलती है। एकीकरण से, उन्मूलन से नहीं।
एकीकरण, उन्मूलन नहीं, ये गहरा है। दूसरी, एक बौद्धिक या वैचारिक सीख।
वैचारिक सीख ये हो सकती है कि गहरे भावनात्मक सदमे या ठहराव का इलाज कभी कभी उतनी ही गहरी शारीरिक चुनौती से संभव होता है। शरीर हमारी भावनाओं को प्रोसेस करने का, उनसे गुजरने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है, खासकर तब जब सिर्फ दिमागी तौर पर सोचने विचारने से बात नहीं बन रही हो। और ये भी कि कभी कभी कुछ कर गुजरना, रेडिकल एक्शन, भले आप पूरी तरह समझ न रहे हो कि क्यों कर रहे हैं, वो भी बदलाव ला सकता है। एक्शन कभी कभी विश्लेषण से ज्यादा प्रभावी हो सकता है।
सही कहा। और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख जो हम सबके लिए लागू हो।
वो शायद ये है कि हमारी सहन शक्ति और मजबूती अक्सर मुश्किलों की आग में ही बनती है, और हम जितना खुद को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल होते हैं। पूरी जिम्मेदारी लेना, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जानबूझकर मुश्किल रास्ते चुनना हमें गहराई से बदल सकता है और खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। और जिंदगी में प्रामाणिकता, अपनी राह खुद चलो, ये बहुत मायने रखती है।
ये वाकई सोचने वाली बातें हैं। शायद आज की हमारी जो भागदौड़ भरी और कई बार आरामदेह लगने वाली जिंदगी है, उसमें हम कहीं ना कहीं इस तरह की सच्ची जमीनी चुनौतियों से दूर हो गए हैं, जिनसे शायद गहरा भावनात्मक विकास हो सकता है। ये एक विचार छोड़ जाता है मन में कि क्या हमें भी कभी कभी अपने मॉन्स्टर से भागने के बजाय उसे उठाकर कुछ दूर चलने की जरूरत है।
सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।
ध्वनि